चिंता है कि इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। वैष्णव पर दुख दुखी होता है, दूसरे शब्दों में उसे निजी कष्ट नहीं होता, किंतु दूसरों को दुखी देखकर वह दुखी होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है, अतएव मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ। किंतु मेरी एक समस्या है, क्योंकि मैं इन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोच रहा हूँ, जो माया सुख अर्थात क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है। क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है, अतएव उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती। किंतु पतित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने के कारण वह उनको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक श्रील सुखदेव गोस्वामी से यह जानना चाहा कि मानवता को किस प्रकार नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके थे कि लोग किस प्रकार नारकीय जीवन में प्रवेश करते हैं, और वे यह भी बता सकते थे कि उन्हें किस प्रकार से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्यों को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत का अभाव है। अतः लोग घोर अज्ञान से पीड़ित है और इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं करते। उन्हें अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक भोग के पीछे भागने में मदांध प्राय हो चुके हैं। फिर भी हमारा एवं विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि उनको बचाए। महाराज परीक्षित उनके प्रतिनिधि है जो उन्हें बचा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस रविवारीय भागवतम क्लास में सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि पिछले अध्याय में माने पांचवे स्कंद के 26वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने नरकों का वर्णन किया है, और पिछले संडे हम सुन रहे थे श्रीमान जनार्दन लीला प्रभु जी से कि किस प्रकार उस श्लोक में बताया गया था कि गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करें, और अगर ऐसा कोई करता नहीं है तो उसको भी एक नरक की उसको नरक में जाना पड़ता है और वहाँ पे उसको यातनाएं दी जाती है। तो आज के इस श्लोक में एक शब्द आता है महाभाग। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को उद्देश करके यह शब्द का प्रयोग करते हैं कि महाभाग, और इसका अर्थ श्रील प्रभुपाद जी अर्थ में लिखते हैं कि ओ ग्रेटली अपुलेंट एंड फॉर्चुनेट सुखदेव गोस्वामी। हिंदी में हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, ऐसा वर्णन परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में करते हैं। अभी हम देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी जो है एक विरक्त सन्यासी है, उनके पास तो वस्त्र भी नहीं है, और वे गंगा के तट पर परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई भाग्य या ये जो वैभव जो दिखाई नहीं दे पड़ता है, विशेष रूप से अगर भौतिक रूप से हम सोचे तो किसी प्रकार का भाग्य या ऐश्वर्य उनमें दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु भक्त यह जानते हैं परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त यह जानते हैं कि व्यक्ति का सही फॉर्चून या भाग्य और वैभव क्या है, भक्ति है। तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 6 ऑपुलेंसेस, 6 उनके वैभव है, और उसमें से एक वैभव है विरक्तता, वैराग्य, रिनाउंसिएशन। और यह सुखदेव गोस्वामी जी का भी एक ऑपुलेंस या वैभव है। क्योंकि हम देखते हैं भौतिक जगत में कितने कितने साधु महात्मा भी होते हैं, परंतु समय के अनुसार कभी कभी उनका वैराग्य टिका नहीं रहता है, उनका पतन हो जाता है। परंतु सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े वैरागी थे कि वे माँ के गर्भ से ही उन्होंने वैराग्य का धारण किया था, इतना तक कि वे गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे, तो इतना उनका वैराग्य था। तो ये उनका एक ऑपुलेंस है, एक वैभव है। और दूसरा फॉर्चून, उनका भाग्य क्या है कि रियल फॉर्चून इज रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। अगर हमें भगवान का स्मरण हो गया तो वही सही रूप में अपना भाग्य है। अंते नारायण स्मृति, हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है कि अंत में भगवान का स्मरण हो पाए। तो यह भाग्य जो है सुखदेव गोस्वामी जी का है, और उनके कृपा से परीक्षित महाराज को भी यह भाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज उनको महाभाग कहते हैं कि आप एक तो बहुत भाग्यशाली हो और वैभवशाली हो। तो हमको भी जानना चाहिए कि अपने जीवन में कुछ फॉर्चून या कुछ धन हमें कमाना है तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किस प्रकार हो पाए, इसका हमें धन कमाना चाहिए। आगे आता है कि तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, और भी एक दो लेक्चर हमने शिला प्रभुपाद जी के सुने इस विषय पर, उसमें शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन है ये बहुत ही विरल है, रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि 84 लाख 84 लाख स्पेसीज के वो जो योनिया है उसमें बार बार घूमने के पश्चात एक बार हमको मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो एक जीवन ही हमें कितना कठिन होता है, हालांकि ये मनुष्य जीवन है फिर भी इसमें इतनी कठिनाइयां आती है। तो बाकी प्राणी, कीटक, पक्षी, सांप, अलग अलग योनियों में हम घूमते रहते हैं। ऐसे 84 लाख योनियां घूमने के पश्चात, हाँ वो भी प्रभु जी कह रहे थे कि एक एक योनि में कभी कभी बार बार घूमना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार साफ हो गए तो बाद में साफ होने का चांस नहीं, या तो ऐसा है कि कभी कभी एक ही योनि में बार बार फेरा लेना पड़ता है। तो ऐसा बहुत से सर्कल साइकल्स होने के बाद हमको मनुष्य जीवन मिलता है। तो यह जो मनुष्य जीवन है वह बहुत ही विरल है, रेयर है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त की है। हाँ, भगवान ने हमें विशेष सुविधाएं दी है। हाँ, रहने के लिए घर दिया है, बहुत से लोगों को खाने के लिए प्रसाद दिया है या भोजन दिया है, और बाकी भी सुविधाएं, कपड़े वगैरह, और विशेष रूप से हमें ज्यादा बुद्धि, इंटेलिजेंस दिया है जो कि अन्य प्राणियों में नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई बड़ा पोस्ट पे कलेक्टर है या कोई जज है, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटी देता है, उनको कार देंगे, उनको नौकर चाकर देंगे, ड्राइवर देंगे। क्यों? क्योंकि वे अपना बाकी का जो समय है वो बड़े कार्य में, जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें लगाए, ना कि गाड़ी चलाते बैठे या झाड़ू मारते बैठे। यही करते रहे जज साहब या कलेक्टर साहब तो वो जिला कौन चलाएगा या वो जो न्याय कौन देगा? तो इसलिए महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उनको सरकार ने सुविधाएं दी है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन की जो सुविधाएं है, जो हमें प्राप्त हुई है, वो भगवान ने हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दी है, ना कि जो अन्य प्राणी करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये जो 4 चीजें हैं वो हम में और पशुओं में कॉमन है, सेम है। अगर यही चीजें करने में हम हमारा यह जीवन भी वेस्ट व्यतीत कर दे तो जो भगवान ने हमें सुविधा दी है उसका हमने अच्छे से लाभ नहीं लिया। उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि समुद्र का, यह जो भौतिक जगत है एक प्रकार का भवसागर है, एक समुद्र है, और इसमें यह जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है एक प्रकार की बोट के समान है, जो जहाज के समान है। और साधु और गुरु जो है इसमें जो बोटमैन या जो बोट चलाने वाले या कर्णधार बोट के कैप्टन हैं। और जो सुविधाएं हमें प्राप्त हुई है इस मनुष्य जीवन में वो फेवरेबल ब्रीजेस मतलब जो अच्छे हवामान है जो कि हमें तट के उस पार लेके जा सकता है। परंतु अगर हमने इस मनुष्य जीवन के बोट का भी उपयोग नहीं किया, गुरु का मार्गदर्शन नहीं लिया, ये जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर है या जो ब्रिजेस है उसका भी वापर करके हमने ये भवसागर पार करने का प्रयास नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। तो हमको चाहिए कि ये मनुष्य जीवन का अच्छे से लाभ उठाए। मनुष्य में भी प्रभुपाद जी ने दो प्रकार के मनुष्य बताए हैं या उनकी प्रवृत्ति के बारे में बताया है, सुर और असुर। सुर माने देवताओं के जैसे उनके गुण हैं और उसका अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो धर्मों के तत्व के अनुसार जीवन जीते हैं वे सुर है और जो धर्म के तत्वों के विरुद्ध जीवन जीते हैं वे असुर है। ऋग्वेद में भी इसका व्याख्या आता है कि सुरा ऑलवेज एम्स एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जो जो देवी गुण के लोग रहते हैं उनका जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। तो हमको क्या बनना है? सुर बनना है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है इसका हमेशा विचार करना है, इसके द्वारे में प्रयास करना है। और इसके विरुद्ध एक शब्द आता है आत्महा, जो आत्मा का हनन करने वाला, किलर ऑफ द सोल। अभी देखिए आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी यह शब्द क्यों वापरते हैं कि आत्महा जो किलर ऑफ द सोल, क्योंकि आत्मा का सही गुणधर्म है कि वे भगवान की सेवा करें। हाँ, परंतु अगर हमने इस शरीर का मनुष्य जीवन का उपयोग भौतिक इंद्रियों सुख में, उसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्षणिक सुख है, टेम्पररी हैप्पीनेस, क्षणिक सुख के खोज में अगर हम ये जीवन गवाते हैं तो ऐसा हो जाएगा कि हमने हमारे आत्मा का ही नुकसान कर दिया, हनन कर दिया। तो ये एक आगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत ही अच्छा पुस्तक है उपदेशामृत। उसके पहले श्लोक में, पहला श्लोक आप में से बहुत जनों को कंठस्थ होगा, फिर भी मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि पृथ्वीम सशिष्यात्। इस श्लोक का अर्थ है कि जो वाचो बोलने का जो अपना शक्ति है, वाचो वेगम, मनसा मन का वेग, क्रोध इनकी क्रोध वेगम, जिह्वा उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा मतलब जीभ, उदर माने पेट और उपस्थ माने जननेन्द्रिय, इनके जो वेग है उनको कंट्रोल करता है, उनको अपने कंट्रोल में रखता है या भगवान की सेवा में लगाता है, वह व्यक्ति पूरे विश्व में अपने शिष्य बनाने के योग्य है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में परीक्षित महाराज का ही कथा प्रभुपाद जी बताते हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि अटोनमेंट क्या है, या जैसे इस तात्पर्य में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि व्यक्ति को, मनुष्य को नरकों से बचाने का मार्ग क्या है। और उसमें सुखदेव गोस्वामी जी पहला उत्तर देते हैं अटोनमेंट, पश्चाताप। अगर कोई व्यक्ति अपने इस जीवन के अंत से पहले, मरने से पहले अपने किए हुए सभी कर्मों का, विशेष रूप से पाप कर्मों का पश्चाताप कर लेता है, उसका अटोनमेंट कर लेता है, तो उसको नरक की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसमें परीक्षित महाराज उनसे पुनः प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने प्रायश्चित के बारे में बताया, परंतु मैं तो राजा हूं और मैंने देखा है कि कई चोर उनको चोरी करते हैं और प्रायश्चित के रूप में उनको दंड दिया जाता है, उनको जेल में भरा जाता है, और जैसे वे वापस जेल से आते हैं पुनः वो चोरी करने लगते हैं। तो ये किस प्रकार का अटोनमेंट है, किस प्रकार का पश्चाताप है? इसका तो उदाहरण कुंजर स्नान माने हाथी का स्नान के बराबर किया जा सकता है, क्योंकि हाथी क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से सरोवर में जाएगा, बहुत अच्छी तरह से नहाएगा, पानी उड़ाएगा, शरीर के ऊपर लेगा, ऐसा लगेगा कितना अच्छा स्नान किया इन्होंने, और जैसे ही सरोवर से बाहर आएगा तो धूल अपनी सूंड में लेगा और अपने पूरे शरीर पर धूल डाल के लेगा। तो उसके स्नान का कुछ उपयोग हुआ, कुछ लाभ हुआ? नहीं। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, अटोनमेंट करता है, और उस कुछ समय बाद वापस से वही पाप या वही गलत कर्म दोहराता है, तो उस अटोनमेंट का क्या लाभ? तो परीक्षित महाराज यह प्रश्न पूछते हैं। उसमें उसमें श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीन प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक, सुन के, किसी वरिष्ठ ने बताया, गुरु साधु शास्त्र ने बताया, हमने सुन लिया और अपने जीवन में आचरण किया, ये फर्स्ट क्लास नॉलेज है। सेकंड है कि देख के, अनुभव से, मैंने देखा, एक आदि व्यक्ति ने देखा कि ये चोर है, इसने चोरी की, इसको शिक्षा हुई, दंड हुआ, और समझ गया कि अरे चोरी करना गलत बात है, उससे हमें दंड प्राप्त होगा। तीसरा क्लास है कि वो चोरी करता है, दंड प्राप्त करता है, वापस आके पुनः चोरी करता है, तो इसको श्री प्रभुपाद जी कहते हैं रास्कल, वो अंग्रेजी में, तो मूर्ख व्यक्ति है वो, कि जो अनुभव लेने के पश्चात भी वापस से वही दुष्कर्म करता रहता है। तो हमको चाहिए कि ये परीक्षित महाराज का भी यही प्रश्न है कि अटोनमेंट का क्या लाभ अगर उसका अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, वापस वापस वो पाप करने की इच्छा अपने हृदय से नहीं जाती है। तो सेम क्वेश्चन, सिमिलर प्रश्न भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ने वायोरपि सुदुष्कर। और आगे कहते हैं कि ये जो मन है, इसका निग्रह करना, इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, परंतु हवा को, परंतु मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, अर्जुन कहते हैं। आगे कहते हैं कि कभी कभी पाप करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी अपने हाथ से पाप हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा, ये काम और क्रोध है, इसके कारण सभी पाप होते हैं, और इससे मुक्ति पाने का क्या है सॉल्यूशन? उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च कुह्यते। तो अभ्यास माने प्रैक्टिस, और वैराग्य माने रिनाउंसिएशन। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं, और एक जगह पे तात्पर्य में कहते हैं कि अगर हम ह्यूमन मनुष्य जीवन में तपस्या करना सीख लिए, तपस्या और ब्रह्मचार्य का पालन करें, तो हमें ये भक्ति का जो मार्ग है सुकर हो सकता है, इजी हो सकता है। तो रियल ऑस्टेरिटी अभी इस कलयुग में सही में तपस्या क्या है? हम तो जंगल में जाके एक पैर पर खड़े रह के भगवान का ध्यान, तपस्या, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी को भी सरल करके श्रील प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, केवल इन चार नियमों का अगर हम पालन करें, और चार नियम कौन कौन से हैं? नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं, नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं, और नो इंटॉक्सिकेशन माने मद्यपान या नशापान नहीं। तो ये चार नियमों का अगर हम पालन करें, हाँ, और एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड अंडर गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, भगवान श्री कृष्ण के सेवा में खुद को लगाए, और कैसे? गुरु के और वरिष्ठ वैष्णवों के मार्गदर्शन के आधार पर। अभी कुछ कुछ भक्तों को ऐसा लगता है कि मैं अकेला जाके भक्ति करूंगा, अकेला जाके कुछ नया करूंगा, कुछ अलग करूंगा, परंतु शास्त्रों में उदाहरण है कि हमको हमेशा भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन के भीतर ही भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी एक श्लोक है, एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते, यह शास्त्र विधि मुना वर्तते कामकारतः। तो अगर कोई शास्त्र विधि इनका भी पालन नहीं करता है और एकांतिकी हरेर भक्ति करता है, हरि की भक्ति कर रहा है परंतु अकेला कर रहा है, किसी के मार्गदर्शन के नीचे नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है? समाज में और खुद के वैयक्तिक भक्तिमय जीवन में उत्पात एव ही कल्पते, वो केवल उत्पात मचाता है। तो हमको चाहिए कि भक्ति भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन के नीचे करनी चाहिए, और तपश्चर्या क्या है? कि चार नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डिवोटी इज पर दुख दुखी, जो भगवान के भक्त है वे दूसरों के दुख में अपना दुख देखते हैं और दूसरों के सुख में अपना सुख देखते हैं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वैयक्तिक जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपके नाम गुण रूप लीला इसके इसके विचार में या इसके मेडिटेशन में मैं हमेशा तल्लीन रहता हूं, उसकी वजह से भौतिक ताप मुझे कभी तकलीफ नहीं देते हैं। परंतु ये जो भौतिक जीवन में भौतिक लोग है, बाकी के लोग है जो ये क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, उनकी मुझे दया आती है और उनका कैसे इस मुक्ति हो इसका मैं विचार करके मुझे व्यथा होती है, तो कृपया इसका कुछ मार्ग बताएं। और शास्त्रों में बहुत से उदाहरण है। परीक्षित महाराज का हमने इस देखा कि परीक्षित महाराज खुद तो भगवत धाम जाने ही वाले हैं, भगवान का कथा सुन रहे, भगवान के शुद्ध भक्त है, परंतु वे खुद के बारे में नहीं पूछ रहे, पूछ रहे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बाकी सब लोग हैं जो नरक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अपने कुकर्मों की वजह से, उनको नरक से कैसे बचाया जाए। परीक्षित महाराज देखा, प्रहलाद महाराज देखा कि पूछ रहे कि किस प्रकार सबका उद्धार हो। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य चरित में वासुदेव दत्त नाम के एक भक्त है, वे भी चैतन्य महाप्रभु को एक ही वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सब का पाप आप मुझे दे दो और उनको इस भवसागर से मुक्त करो। तो कितना बड़ा दया भाव है, कितनी करुणा है, सबका पाप लेने के लिए तैयार है और सबको मुक्ति दिलाने का विचार है। तो ये वासुदेव दत्त, ऐसे ही भागवत में कथा है भगवान शिव जी की। भगवान शिव जी समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल नाम का विष वहां से आया और इतना भयानक वो विष था कि पूरे विश्व को वो भस्म कर सकता था या नष्ट कर सकता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के भगवान के आदेशानुसार शिव जी ने वह विष को अपने गले में धारण किया और उनका नाम नीलकंठ हुआ। तो हम देखते हैं शास्त्रों में कि वैष्णव जो है वो हमेशा पर दुख दुखी है, दूसरों के दुखों में उनको दुख होता है और उनकी बाकी के सभी लोगों की दुख से, परेशानियों से, तकलीफों से कैसे मुक्तता हो इसका वैष्णव हमेशा प्रयास करते हैं। और शास्त्रों में मिसप्लेस्ड कंपैशन, गलत जगह पे दया दिखाने का भी एक दो उदाहरण है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक उदाहरण है भरत महाराज का। भरत महाराज भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, परंतु वन में अकेले जब वो अपने आगे की भक्ति करने के लिए या जो राजकारभार वो सब छोड़ के हुए जब वन में चले गए, वहां पे एक हिरण से वे आसक्त हो गए। और ऐसा नहीं कि वो उनका फैमिली मेंबर था या कुछ था, उन्होंने केवल उस हिरण का प्राण बचाने का प्रयास किया, प्राण भी बचाया, परंतु उसके पश्चात वो हिरण के साथ रहने की वजह से उनके साधना में भी बाधा आने लगी और अंत में उनके अंत समय में उनको हिरण का ही स्मरण हुआ और अगला जन्म हिरण का मिला। तो इस उदाहरण से हम देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के, मनुष्य के या प्राणी के केवल भौतिक शरीर के ऊपर दया करें और उसी से आसक्त हो जाए तो इसको हम मिसप्लेस्ड कंपैशन या गलत जगह पे दिखाई हुई दया कह सकते हैं, क्योंकि उससे उसका तो भौतिक लाभ होगा वो व्यक्ति का, परंतु हमारा आध्यात्मिक नुकसान हो जाएगा और उस व्यक्ति का भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। दूसरा एक ऐसा उदाहरण है भगवद गीता का ही, अर्जुन का। अर्जुन भगवद गीता के शुरुआत में, युद्ध के, महाभारत के युद्ध की शुरुआत में बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि उनको युद्ध करने के लिए सामने सभी अपने मित्र और रिश्तेदार दिखाई दिए और तभी उनका जो मोह है, जो अटैचमेंट है या जो ये उनका, उसमें वो कंपैशन के भी वाक्य बोलते हैं, अगर ये सब लोग मर गए तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पिंडदान करने के लिए नहीं कोई बचेगा, व्यभिचार बढ़ेगा, बहुत सा अच्छा अच्छा बातें बोलते हैं। तो उसको भगवान श्री कृष्ण खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि ये गलत कंपैशन है, मिसप्लेस कंपैशन, तो गलत जगह की दया है। तो इस प्रकार ये दो उदाहरण हम देखते हैं कि दया जो है या जो करुणा है वो व्यक्ति के रियल मतलब सही में जो उसका लाभ होने वाला है सामने वाले व्यक्ति का, भक्त व्यक्ति का, उसके लिए होना चाहिए, ना कि केवल उसके भौतिक शरीर के लिए दया होनी चाहिए। तो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ कंपैशन, अभी हम देखेंगे कि दया या जो करुणा है वो किस किस प्रकार भगवान के भक्त प्रदान करते हैं। एक उदाहरण आता है राइटिंग स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में या ज्ञान के बारे में पुस्तक लिखना, इस रूप से कुछ भक्त दया करते हैं। उदाहरणार्थ वेद व्यास जी ने भागवत, महाभारत, ये सभी शास्त्रों का, पुराणों का अगर लिखा नहीं होता तो आज हम इस क्लास में बैठे नहीं होते, है ना। तो इनका जो भगवान व्यासदेव का यह दया है, करुणा है हमारे सभी कलयुग के लोगों के ऊपर कि उन्होंने शास्त्र लिखे। दूसरे उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत का लिखान किया और उसकी वजह से आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ पा रहे, सुन पा रहे। तीसरा उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, ये सभी शास्त्र संस्कृत में थे, बंगाली भाषा में थे, पाश्चात्य देश के लोगों को उसका कुछ लाभ नहीं हो पा रहा था, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार इन सभी शास्त्रों का अंग्रेजी भाषा में भाषांतर किया, उनके तात्पर्य लिखे और इसकी वजह से आज पूरे विश्व को करुणा का लाभ हो रहा है, श्रील प्रभुपाद की जो दया भावना है उसका लाभ हो रहा है। तो ये एक प्रकार का दया भाव या करुणा है जो भक्त लोगों को देते हैं। दूसरा है विशेष रूप से गुरु ये देते हैं, वो है दीक्षा। हाँ, दीक्षा के रूप में गुरु अपने शिष्य को स्वीकार कर लेता है और उनको करुणा या दया प्रदान करता है। एक उदाहरण है शास्त्र में नारद मुनि का, नारद मुनि ने मृगारी को ज्ञान दिया, उनको भक्त बनाया और उनका उद्धार हुआ, तो वो स्टोरी हमको पता है। दूसरा उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी का, उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, जो लोग चारों प्रकार के नियमों का भंग करते थे, नशापान, व्याभिचार, जो आपको इसमें जो लिस्ट नहीं है वो भी कुछ कुछ चीजें वो करते रहेंगे, परंतु ऐसे सभी लोगों को उन्होंने उच्च कोटि का भक्त बनाया, श्रील प्रभुपाद की दया है। और अपने गुरु महाराज, प्रत्येक के अपने अपने गुरु महाराज, उन्होंने भी हमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर हमारे ऊपर भी दया दिखाई है। हम भी व्यक्तिगत जीवन में कोई कोई अच्छे जन्म से कुछ अच्छे भक्त रहेंगे, परंतु विशेष रूप से मैं खुद के बारे में कहता हूँ कि भौतिक जीवन में बहुत ही असक्त और गलत कार्यों में लगे हुए थे, परंतु गुरु महाराज ने हमारे ऊपर दया दिखाकर हमें हमारे दुर्गुणों सहित स्वीकार किया और आज हम सबलन प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार उनकी जो अपेक्षाएं हैं और दीक्षा के समय हमने जो वचन दिए हैं उनका सही तरह से, अच्छी तरह से पालन करें और श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवा दे पाए। तीसरा एक उदाहरण है वैष्णवों के कृपा का या करुणा का, प्रीचिंग, प्रचार। हिज होलीनेस एस बी केशव स्वामी महाराज कहते हैं, ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रीचिंग इज कंपैशन। अगर हमको प्रचार करना है तो उसके लिए कोई बड़ी डिग्री या बहुत बड़ा अभ्यास, ज्ञान या वैराग्य, ऐसे यही सब क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सब पात्रता होने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पात्रता होनी चाहिए कि अपने हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव और करुणा होनी चाहिए। ये चीज अगर अपने हृदय में है तो हम प्रचार कर सकते हैं, तो ऐसा एस बी केशव स्वामी महाराज कहते हैं। तो भगवद गीता में 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वो जो भक्त है, जो मेरी इन जो गुह्य ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, यह ज्ञान दूसरों को प्रदान करता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। तो इस प्रकार प्रीचिंग, प्रचार कर भी भक्त जो है ये करुणा का प्रदर्शन करते हैं। हमारे गोवर्धनिको विलेज के भी ब्रह्मचारी है, अनेकों अनेकों गांवों में, आदिवासी पाड़े में, कहां कहां जाकर प्रचार करते हैं, जहां जाने के लिए गाड़ी भी नहीं है, मैजिक में यहां से जाते हैं प्रसाद लेके, तो वहां पर जाकर वो प्रचार करते हैं और लोगों को भक्ति मार्ग पर लाते हैं। ये भी भक्तों का करुणा भाव है, दया भाव है। और एक आखिरी प्रकार की दया भक्त करते हैं चास्टाइजमेंट, गुस्सा करके और शाप दे के भी, कर्स। तो उसका उदाहरण है नारद मुनि। नारद मुनि नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर जी के और शिव जी के एसोसिएट्स थे, हाँ, मंदाकिनी गंगा में नहा रहे थे, तो उनको उन्होंने क्या किया, शाप दिया कि आप वृक्षों के भांति नग्न होकर इस शुद्ध मंदाकिनी गंगा में नहा रहे हो, और साधु आपके सामने आया तो भी आपको लज्जा नहीं हो रही है, तो आपको मैं शाप देता हूं कि आप वृक्ष बन जाओ। तो एक प्रकार का शाप है। हजारों हजारों साल तक वे अर्जुन वृक्ष के नाम से वो पड़े रहे, वृक्ष को कुछ हिलने को भी नहीं आता है, तो इतना बड़ा शाप दे दिया। परंतु ये भी उनका दया है, करुणा है। कैसे कि ये जो वृक्ष थे वे कहाँ पे आए, नंद महाराज के आंगन में, और उनको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन हुआ। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनका मुक्ति भी हो गया। तो ये एक प्रकार से आशीर्वाद हो गया, कृपा हो गया। दूसरा उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेकों राक्षसों का वध किया, शिशुपाल का वध किया। तो शिशुपाल के वध के समय युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान को, हे भगवान, ये तो इतना गलत व्यक्ति था, पापी था, आपका अपमान कर रहा था, और उसको आपने मुक्ति कैसे दे दी? हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार मृत्यु के पश्चात शिशुपाल का आत्मा भगवान में विलीन हो गया। तो भगवान का यह कृपा है, वो जो दंड देते हैं या मृत्यु दंड भी देते हैं, तो वो भी लाभदायी होता है। जितने भी लोग महाभारत के युद्ध में युद्ध स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका मृत्यु हो गया, उन सबको भगवान की प्राप्ति हो गई, सबका लाभ हो गया। तो इस प्रकार कभी कभी वैष्णवों का दंड या वैष्णवों का जो शाप, ये भी एक प्रकार का कंपैशन, दया ही होता है, और कभी कभी वही जरूरी रहता है। कुछ कुछ लोग, एक हिंदी में प्रोवर्ब है कि लातों के भात क्या, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कुछ कुछ लोगों को वही भाषा समझती है कि प्रेम से बताते हैं वैष्णव भक्त, कितनी बार बताते हैं तो समझते नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान नहीं, माया देवी, क्या वो भी श्लोक है कि माया तार चपटिया धरी, क्या कैसा है प्रभु जी, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करी, निकटस्थ माया तारी झपटिया धरी। कृष्ण को भूल के व्यक्ति क्या करता है, भोग की वंचा करता है, और माया तो बाजू में खड़ी है, तो क्या करेगी, झपटिया धरी, एक झापड़ लगा देती, क्या करेंगे। तो ऐसा होता है। तो हमको चाहिए कि वैष्णव जो भी है उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वे इतने सब प्रकार से विश्व को, पूरे मनुष्य जाति को अपना कृपा प्रदान कर रहे हैं, करुणा बरसा रहे हैं। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं, हाउ टू बी कंपैशनेट, कि हमको किस प्रकार दयावान होना है। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं कि बीइंग अवेयर ऑफ अदर सफरिंग्स एंड डू समथिंग एक्टिवली टू रिलीव, इतने बस हाँ, रिलीव अदर सफरिंग। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि हमको दयावान या कृपा कैसे हम बन सकते हैं, कंपैशनेट दूसरे के प्रति कैसे, तो दूसरों का जो दुख है उसको हमको फील करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसको कहते हैं कि सेंसिटिविटी। हम केवल सेंसिटिव रहे तो हमको तुरंत समझ में आ रहे, ये व्यक्ति दुख में है, हाँ, भगवान को भूल कर गलत मार्ग से जा रहा है, तो उसके जीवन में दुख आ रहा है, ये हमको समझता है। तो केवल समझने से नहीं होगा, उसके आगे डू समथिंग एक्टिवली टू रिलीव दैट सफरिंग, तो उसका वो दुख दूर करने के लिए हमको कुछ प्रयास करना चाहिए, हाँ, एक्टिवली कुछ काम करना चाहिए, तभी उसको कंपैशन कहा जा सकता है। तो इस गोवर्धन इको विलेज में भी हम देखते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने सभी लोगों के, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनके बॉडी माइंड और सोल सबका किस प्रकार विकास होगा, उनका लाभ होगा, इस प्रकार से सभी चीजें आयोजित की है। इसका उदाहरण आता है, एक बच्चा अगर मेले में माता पिता से बिछड़ जाता है और रोने लगता है, उसको भूख भी लगी है, तो उसको खाना देना चाहिए कि माता पिता से मिला देना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। भूखे भूखा बच्चा है, उसको खाना भी देना चाहिए और उसको माता पिता से भी मिला देना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। भूखे, क्या एक हिंदी में प्रोवर्ब है, भूखे पेट भजन ना होए, इस समथिंग। अगर व्यक्ति के पेट में खाने के लिए ही कुछ नहीं है तो भक्ति कैसे कर पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने ये व्यवस्था की है कि आजू बाजू के गांव में जितने भी लोग हैं सबको अन्न क्षेत्र के माध्यम से फ्री में प्रसाद मिल जाए। तो उनका जो भौतिक नीड है, और इतना ही नहीं कि रूरल डेवलपमेंट के मार्ग से उनको खेती में कुछ ज्ञान मिले, स्कूलों में उनको बच्चों को कुछ पढ़ाई करने का सुविधा करके दिया है, आरोग्य के विषय में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के माध्यम से उनका जो हेल्थ नीड्स है उसका भी। ऐसा देखा जाए तो ये फिलोंथ्रोपी है, माने वो केवल उनके शरीर का ध्यान दिए के अनुसार, परंतु अगर शरीर फिट रहा तो वे भक्ति भी कर सकते हैं। और इस मार्ग से अगर लोग जुट गए, गंगा जमुना सरस्वती अलग अलग प्रोजेक्ट महाराज जी ने शुरू किए हैं, और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण से उनका प्रेम होना चाहिए, उनके शरण में वे आ जाने चाहिए। तो ऐसा हम देखते हैं कि गोवर्धन इको विलेज भी ये भगवान के करुणा का ही रूप है, भक्तों के करुणा का रूप है, महाराज जी ने हम सबके लिए पूरे विश्व के लिए निर्माण किया है। गोवर्धन इको विलेज धाम की, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। किसी की कुछ प्रश्न या टिप्पणी है तो बता सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।